पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही को रुद्र के ऑफिस बुलाया जाता है और जय, निहारिका, राजीव और नेहा एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां निहारिका रूही के प्रति जय के व्यवहार पर सवाल उठाती है। इस अध्याय में दिशा को आशीष मिलता है, जो उसे बताता है कि वो शादी करने वाला है और दिशा को उसके लिए खुश करता है। फिर रुद्र रूही के साथ बाथरूम में जाता है और उसे अपनी गोद में बिठाता है। रूही डर जाती है। इस अध्याय में दिशा को आशीष मिलता है, जो उसे बताता है कि वो शादी करने वाला है और दिशा को उसके लिए खुश करता है। फिर रुद्र रूही के साथ बाथरूम में जाता है और उसे अपनी गोद में बिठाता है। रूही डर जाती है। अब नेक्स्ट चैप्टर 135। अब आगे रुद्र के मुंह से कॉलेज वाली बात सुनकर रूही के चेहरे पर डर नजर आने लगता है। वहीं रुद्र रूही के चेहरे पर डर देख रूही के सूट की डोरी को खींच देता है, जिसे महसूस कर रूही अपनी नजरें उठा रुद्र को देख अपने कांपते होठों से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? रूही ने इतना बोला ही था कि रुद्र उसके सूट को कंधे से नीचे करने लगता है, जिसे देख रूही रुद्र के हाथों को पकड़ते हुए अपनी नम आंखों से कहती है, प्लीज नहीं, मत कीजिए। रूही को यूं अपने काम के बीच बार बार खुद को रोकता हुआ देख रुद्र गुस्से में रूही के बालों को पकड़ उसके चेहरे को अपने चेहरे के और करीब लाते हुए कहता है, रो, तुम मुझे बार बार क्यों रोक रही हो? मैं तो तुम्हारा पति हूं ना, तो तुम्हें किसी भी तरीके से छू सकता हूं, तुम्हें किसी भी तरह से देख सकता हूं, तुम्हें किसी भी तरह से महसूस कर सकता हूं, फिर तुम क्यों मुझे मना कर रही हो? रुद्र की बात सुनकर रूही अपने कांपते होठों से दोबारा बोली, लेकिन मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे अभी और टाइम चाहिए, मैं अभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूं। इतना बोल वे अपनी पलकें झुका लेती है। वहीं रुद्र रूही की बात सुनकर उसके चेहरे को दोबारा उठाते हुए उसकी हल्की ग्रीन आंखों में अपनी ब्लू आंखों से देखते हुए बोला, रो, तुम अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाई हो, तुम अभी भी मुझे एक पति का हक नहीं देना चाहती, तो आज कॉलेज में तुम किसके पूछकर उस लड़के के करीब गई थी? तुमने किसके पूछकर अपनी जान खतरे में डाल उस लड़के की जान बचाई? बोलो रो, बोलो, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम कॉलेज में लड़कों से दूर रहोगी, उनसे बात नहीं करोगी, उनके करीब नहीं जाओगी? लेकिन रो, तुमने ना सिर्फ अपनी जान खतरे में डालकर उस लड़के की जान बचाई, ऊपर से तुम उस लड़के के बेहद करीब भी चली गई। तुम्हें पता है रो, तुम्हें और उस लड़के को इतने करीब देख मुझे कितना गुस्सा आया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उस लड़के की जान ले लूं। लेकिन रो, उस लड़के के ज्यादा तो तुम्हारी गलती है ना, क्योंकि तुमने उस लड़के के करीब जाने की हिम्मत की और उसे अपने करीब आने दिया, तो रो, उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। रुद्र की सारी बातों को सुनने के बाद रूही को समझ में आ जाता है कि रुद्र इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है। रुद्र की बातें और उसकी सजा के बारे में सुनकर रूही को अंदर से काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वे अभी रुद्र को धक्का देकर भाग जाए, पर उसे मालूम था कि रुद्र के यहाँ होते हुए वे कभी भी भाग नहीं सकती, क्योंकि रुद्र के मजबूत बाहों के निकल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। वहीं रुद्र, जो रूही के बिल्कुल करीब था, उसे अब भी काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रूही के कपड़ों से किसी दूसरे लड़के की परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जिस वजह से उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। इसलिए वे रूही के कपड़ों को उसके कंधे से उतारने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख रूही काफी डर जाती है और डर की वजह से बार बार रुद्र का हाथ पकड़ उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, जिसे देख रुद्र अपने गुस्से पर और कंट्रोल नहीं कर पाता और एक चर की आवाज के साथ रूही का सूट उसके शरीर से अलग हो जाता है, जिसे देख रूही तुरंत अपने आप को छुपाने के लिए खुद को अपने हाथों से कवर करने लगती है। वहीं रुद्र साबुन ले रूही की पीठ पर लगाने लगता है। कुछ देर साबुन लगाने के बाद रूही की पीठ को अपने सख्त हाथों से काफी तेजी से रगड़ने लगता है। वहीं रुद्र के ऐसा करने से रूही काफी घबरा जाती है और रुद्र को रोकते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। रूही की बात सुनकर रुद्र बिना अपने हाथ रोके हुए ही बोला, रो, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम्हें इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि तुमने उस लड़के को छुआ है, उसके करीब गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे शरीर से उस लड़के की खुशबू मिटा कर रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर पर किसी की भी छुअन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए रो, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से साफ कर दूंगा। इतना बोल वे फिर से रूही की पीठ को रगड़ने लगता है, जिसके रूही को दर्द के सिवा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। रुद्र रूही की पीठ को साफ करते हुए रूही के गले, उसके सीने और उसके पेट पर साबुन लगाने लगता है। वहीं रुद्र के ऐसा करने से रूही को काफी अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, जिस वजह से वे फिर से रुद्र को देख हिम्मत करते हुए कहती हैं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं खुद से नहा लूंगी और अपने आप को भी अच्छे से साफ कर लूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे अभी छोड़ दीजिए, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे काफी अजीब लग रहा है। रूही की बात सुनकर रुद्र अपनी नीली आंखों से रूही को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, रो, चुप, बिल्कुल चुप, अब अपने मुंह से एक वर्ड भी मत निकालना, और मैं तुम्हारा पति हूँ तो मैं तुम्हें कहीं भी छू सकता हूँ, शुरू शुरू में तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें भी मेरे टच की आदत हो जाएगी। इसलिए रू, शांत रहो। अगर इस बार तुमने मुझे कुछ भी बोल दोबारा डिस्टर्ब किया तो रू, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ जो मेरी प्यारी रूह के बर्दाश्त के बाहर होगा। इसलिए रू, चुपचाप बैठी रहो। रुद्र की बात सुनकर रूही को काफी डर लग रहा था। वे यहाँ से और रुद्र से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी, मगर वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वे दोबारा अपने आप को अपने हाथों से कवर कर अपनी आंखों से आंसू रोकने की कोशिश करने लगती है। क्योंकि रुद्र जिस तरह का उसके साथ बिहेव कर रहा था, उसे उस वजह से काफी रोना आ रहा था, लेकिन वे बहुत मुश्किल से अपना रोना कंट्रोल करके बैठी हुई थी। वहीं रुद्र जब रूही को फिर से खुद को छुपाता हुआ देखता है तो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, क्योंकि वे जितनी भी कोशिश कर ले इस लड़की को समझाने की, ये लड़की कुछ समझती ही नहीं, या यूं कहे कि एक बार में उसे उसकी बात समझ में ही नहीं आती। रूही की इन्हीं सब हरकतों से उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वे जितना भी प्यार से उसे समझाने की कोशिश करे या जितना भी प्यार से उसके बात करे, लेकिन ये लड़की हमेशा उसके दूर ही भागती थी, कभी भी उसके करीब नहीं आती थी, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसे अपनी रूह पर गुस्सा आ ही जाता था।
वे कुछ देर यूं ही अपनी आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद जब वे अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं।